ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता आशीष कुमार पांडेय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
आशीष कुमार पांडेय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया मुझको इनवाइट करने के लिए, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
आशीष जी, देश में 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए 3 नए आपराधिक कानून दंड संहिता से हमें न्याय संहिता की ओर लेकर गए हैं। देश इनके माध्यम से एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जिसमें हम आधुनिक युग में हैं, यानी कि प्रौद्योगिकी के युग में हैं। इस बदलाव पर आप क्या कहेंगे?
बहुत ही कॉमन परसेप्शन था कि कोर्ट्स में आपको न्याय नहीं मिलता है। अगर आप कोर्ट्स जाते हैं तो हर तारीख पर आपको मिलती है नई तारीख। तो देखिए, जिस समय नए कानूनों को डेलिब्रेट किया जा रहा था पार्लियामेंट के द्वारा, देखिए कई सारे कारण थे जिसकी वजह से नए कानून लाए गए, लेकिन उसमें एक कारण ये भी था कि जिस तरीके से डिलेज हो रहे हैं, एक लंबी पेंडेंसी है कोर्ट केसेस में, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब इसको आप इस चीज के साथ मिलाकर देखिए कि आईटी इंडस्ट्री में हमारा देश एक सुपर पावर है, तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी को एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है, जहां पर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। तो नए कानूनों में इस चीज का प्रयास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, ऐसे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम एक न्याय की प्रक्रिया को त्वरित प्रक्रिया में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत ही एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आने वाले समय में यह देखना होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ चीजें क्या एक्चुअलिटी में इम्प्रूव हो रही है या इसमें फिर फर्दर कुछ चेंजेस की जरूरत है।
गृहमंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में बनाए गए 4 राष्ट्रीय ऐप पेश किए हैं, जिनमें ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई संबंध जैसे ऐप शामिल हैं। तो एक सामान्य दृष्टि से अगर हम देखें तो इनके क्या लाभ होंगे, अगर हम इन सभी के बारे में आपसे जानना चाहें तो?
देखिए, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज किया गया है नए कानूनों में कि पूरी जस्टिस डिलीवरी प्रोसेस को एक स्मूथर तरीके से रन किया जा सके। ये जो ऐप लॉन्च किए गए हैं ये इसी दिशा में एक उठाया गया कदम है। अब देखिए, पहला ऐप जो है वो आपका ई साक्ष्य है। अगर आप देखेंगे कि नए कानूनों में जिस तरीके से एविडेंस को लेकर चेंजेस हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, इस चीज की कोशिश की गई है कि एविडेंस के साथ मैनिपुलेशन ज्यादा ना कोई कर पाए, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी गई है। तो ये ऐप इस चीज की ओर प्रभावी कदम है, जहां पर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी भी क्राइम सीन पर जाता है और इन्वेस्टिगेशन करता है, तो वहां से डिफरेंट फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। और जब एक बार इस ऐप पर इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो एक सेंट्रल डेटाबेस है, सर्वर है, वहां पर ये चीजें ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती हैं, और वहां पर स्टोर होने के बाद इसमें फर्दर मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। और ये सेम सर्वर पर जो डेटा पड़ा हुआ है वो ट्रायल के समय जज को भी अवेलेबल होता है, प्रोसिक्यूशन का जो वकील वहां पर खड़ा हुआ है, सरकारी वकील, उसको भी अवेलेबल होता है, जो डिफेंस काउंसिल है उसको भी अवेलेबल होता है। तो एक तरीके से मैनिपुलेशन की प्रोसेस को खत्म करते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया गया है जहां पर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तुरंत देन एंड देयर एविडेंस को रिकॉर्ड करता है और सबमिट कर देता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। इसी तरीके से देखिए, एक दूसरे ऐप की हम बात कर रहे हैं,
न्याय सेतु की बात कर रहे हैं।
तो न्याय सेतु अपने आप में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पूरी प्रोसेस से जुड़े होते हैं। जब हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो उसमें आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आ जाती हैं, प्रोसिक्यूशन साइड आ जाता है, उसमें आपकी बहुत सारे जो विटनेसेस हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं या और एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो कोर्ट रूम के जो ऑफिसर्स होते हैं, जजेस होते हैं, डिफेंस काउंसल्स होते हैं, प्रिजन्स होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। तो जहां भी कोई प्रोसेस नई स्टार्ट होती है या केस की किस स्टेज पर चल रहा है, एक अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम से सारे लोग कनेक्टेड हैं, तो हम देखते हैं कि एक्चुअलिटी में बहुत सारा समय एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या समन्स इश्यू करने या इन चीजों में जो बर्बाद हो जाता था, वो अभी इस ऐप के माध्यम से हमको मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट ऐप की जिसकी हमने बात करी है,
न्याय श्रुति।
देखिए, न्याय श्रुति पिछले जब 2019 में कोरोना पूरे देश में आया, पूरे विश्व में आया, तो हमने देखा कि हमारे देश ने बहुत ही तीव्र गति से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया। कोर्ट्स भी इसमें पीछे नहीं रही। हमने देखा कि ऑडियो वीडियो विजुअल माध्यम से कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स चलती रही, कोरोना के दौरान भी चलती रही। तो अब ये कैसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है जहां पर ऑडियो विजुअल मीडियम से कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स रन की जा सकती हैं। और इसमें देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस चीज को भी समझने की है कि चूंकि नए लॉज जो आए हैं वो टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हुए इस चीज पर भी जोर देते हैं कि बहुत सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग अब ऑनलाइन की जा सकती है। प्रिजन ऑफिसर्स जो प्रिजन में कोई कैदी है उसको कोर्ट तक ले जाने की शायद अब उतनी जरूरत ना हो जब तक स्पेशल रिक्वायरमेंट ना हो, वहीं से ही उसकी पेशी किसी भी कोर्ट में हो सकती है। तो इन सारी चीजों के लिए बहुत ही जरूरी था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर कोर्ट के पास एक ऑडियो विजुअल माध्यम है जहां पर सारे स्टेक होल्डर्स कोर्ट के सामने अपीयर हो सके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इस प्रकार जो आपका आखिरी ऐप है ई समन्स, देखिए कोर्ट की प्रोसेस किस तरीके से काम करती है इसको समझिए कि कोर्ट को जब किसी को बुलाना होता है तो सबसे पहले समन्स इश्यू होते हैं। कई बार इस पूरी प्रोसेस में ही बहुत डिले हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल अगर देता हूं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर किसी डेट पर मौजूद नहीं है और उस दिन उसकी जरूरत है तो अगर बाकी सारे लोग भी वहां पर हों कोर्ट में तो वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती। इसी तरीके से कोई क्रूशियल विटनेस अगर किसी क्रूशियल डेट पर अवेलेबल नहीं है तो पूरी प्रोसेस वहीं पर स्टक हो जाती है और अगली डेट मिल जाती है। और वो व्यक्ति वहां पर क्यों नहीं अवेलेबल था उसमें देखिए एक ये भी कारण हो सकता है कि वो जानबूझकर कोर्ट की प्रोसेस को अवॉइड कर रहा हो, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि उस तक समन्स पहुंचे ही नहीं। जब हम ई समन्स की बात करते हैं, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, व्यक्ति आजकल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज करता है। अगर आप देश के किसी सुदूर कोने में भी हैं तो एक प्रेजम्पशन है कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो एक अगर ऐसा सिस्टम है जहां पर समन्स की ई डिलीवरी हो जाती तो कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो ये चारों एप्स जो आए हुए हैं, जिस मंशा के साथ नए क्रिमिनल लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया है, जो प्रोविजन्स ऐड किए गए हैं, उनको ही धरातल पर उतारने का ये प्रयास चार ऐप करते हैं।
आशीष जी, आज के समय में हम देखते हैं कि साइबर अपराधों की संख्या बढ़ चुकी है और पुराने कानूनों में साइबर अपराधों के लिए कोई खास प्रावधान भी नहीं था, लेकिन नए कानूनों में व्यवस्था की गई जो वाकई अब समय की मांग भी है। तो ऐसे में प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ने के बारे में आपके क्या विचार है, खासतौर पर जो इन सारी प्रक्रियाओं से जुड़े हुए लोग हैं?
बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है। देखिए हमारे देश के जो जनरल क्रिमिनल लॉज थे उसमें साइबर क्राइम्स को लेकर ज्यादा बात नहीं की गई थी जब हम आईपीसी की बात करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले एक एक्ट आया था हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो साइबर क्राइम्स मोस्टली उस एक्ट के प्रावधान के तहत ही डील हो रहे थे। तो एक पैरेलल व्यवस्था थी, एक स्पेशल एक्ट था जो कि साइबर क्राइम्स को डील करता था और एक जनरल एक्ट था जो कि हमारे नॉर्मल क्राइम्स को डील करता था। तो कई बार हम ऐसा देखते थे कि कुछ ओवरलैपिंग भी हो रही है। अब नए कानूनों को अगर आप देखें तो इनको लाने के पीछे एक वजह यह भी थी कि ओवर द ईयर्स जो अपराधों का नेचर है वो चेंज हुआ है। आज की डेट में देखेंगे अगर मोस्टली क्राइम्स साइबर मोड के थ्रू हो रहे हैं, हम सबके पास मोबाइल, अगर हम देखते हैं डेली हमको इतने न्यूमरस एसएमएसेस आते हैं, फिशिंग ईमेल्स आते हैं जहां पर आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी शेयर किया था, मैं आज फिर शेयर करता हूं कि आजकल एक कस्टम फ्रॉड के नाम से बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है पूरे देश में। यूजली आपको एक मैसेज आता है या कॉल आती है जो ये कहती है कि कस्टम पर आपका कोई कंसाइनमेंट फंसा हुआ है और उस कंसाइनमेंट में या तो आपको बताएंगे कि आरडीएक्स है या कोई ऐसी चीज है जो कि प्रोहिबिटेड है और वो आपसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बनकर फोन करेंगे और आपको कुछ अमाउंट देने के लिए कहेंगे, पैसे देने के लिए कहेंगे और उसको पूरी प्रोसेस में आपको बंद कर देते हैं। तो बहुत ही आवश्यक था कि नए कानूनों में जो नए जमाने की रियलिटीज हैं उसको ध्यान दिया जाए। तो प्रौद्योगिकी के साथ साथ हम देखते हैं कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उनमें लोगों को जस्टिस डिलीवर करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक था कि एक अपराधों में जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्रिमिनल्स कर रहे हैं ना सिर्फ उसको कंट्रोल में लाया जाए, कंटेन किया जाए, उनको पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए, ब्रॉडर फ्रेमवर्क में लाया जाए, बल्कि साथ साथ एक बार इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है उसमें भी आप प्रौद्योगिकी का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर तब जबकि दुनिया में आपको एक प्रौद्योगिकी का सुपर पावर माना जाता है। तो इन कानूनों में इन्हीं चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है।
इन कानूनों में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ही फॉरेंसिक लैब की स्थापना और उनकी संख्या बढ़ाना भी आवश्यक ही है, तो किस तरह से इनको जोड़ा जाएगा इन सारी बातों से?
इन कानूनों में नए जो हमारे कानून आए उसमें न सिर्फ प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया बल्कि साथ साथ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर भी जोर दिया गया है। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर किसी क्राइम में जो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स या इससे ज्यादा का है तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे देखिए दो चीजें होती हैं। अगर आपके पास फॉरेंसिक एविडेंस है तो कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के पास उस चीज को प्रूफ करने के लिए शायद एक बेटर स्टैंडिंग होती है। दूसरी चीज कहीं ना कहीं जो मैनिपुलेशन हो सकता है एविडेंस के साथ, आम लोगों की एक शिकायत रहती है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सही तरीके से जांच नहीं करी है, या कोई एक्सटर्नल एलिमेंट, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हुई है। जब फॉरेंसिक एविडेंस आपका रिकॉर्ड पर होता है तब कहीं ना कहीं एक डाउट्स में इनको रिमूव किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस चीज को भी आप देखिए कि ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग जो है, अभी हम ऐप की बात कर रहे थे जहां पर सारी रिकॉर्डिंग करनी है, उसमें भी एक बड़ी क्रूशियल प्रोसेस वो ऐड करता है कि इस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को आपको रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद आपको जो सर्वर है, सेंट्रल सर्वर है, उस पर उसको अपलोड, वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है। और एक बार अगर इस प्रोसेस को अपलोड कर दिया गया, मैनिपुलेशन की वहां से जो एक संभावना है वो खत्म हो जाती है। तो हम ये मानते हैं कि इन सारी प्रक्रियाओं को अडॉप्ट करने के बाद इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था में निकलेगा जहां पर जो गुनाहगार है उसको सजा मिल रही है, लेकिन जिसने गुनाह नहीं किया है वो शायद उसको इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, और कहीं ना कहीं इस पूरी प्रोसेस को भी जल्दी तरीके से एक स्पीडियर वे में कंक्लूड किया जा सकता है।
आशीष जी, प्रौद्योगिकी का उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही को कैसे बढ़ाएगा?
अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जितना आप मैनिपुलेशन के चांसेस हैं, जो स्कोप है उसको कम करते जाएंगे, तो वैसे वैसे आप देखेंगे कि उस पूरी प्रोसेस को ऑब्जेक्टिव तरीके से कंक्लूड किया जा सकता है। जिस समय आपका एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है, जिस समय आपका किसी क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाता है और वो उस एविडेंस को रिकॉर्ड करना उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है, पुलिस के सामने दिए गए स्टेटमेंट्स की ऑल्दो कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फिर भी नए कानूनों में ऐसा प्रोविजन है कि आप उसको भी रिकॉर्ड करेंगे और वो उस ऐप के थ्रू आपके सर्वर पर अपलोड हो जाता है। इसी प्रकार से फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में भी जब आप एक काबिल टीम जो होती है, एक्सपर्ट्स की टीम होती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और उस न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करती है बल्कि उस पूरी प्रोसेस की रिकॉर्डिंग होती है जो कि आपकी सेंट्रल सर्वर पर अपलोड हो जाती है, इन सारी प्रोसेसेस को एडॉप्ट करने का एक जो असर है वो न केवल न्याय को त्वरित करने की दिशा में उठाया गया कदम है, बल्कि ये भी कि मैनिपुलेशन के जितने चांसेस थे उनको कम से कम करने की कोशिश की गई है। और अगर चांसेस कम हैं और अगर आपके लिए मैंडेटरी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए कि विद इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज और वीक्स और मंथ्स आपको इस प्रोसेस को कंक्लूड करना है, एविडेंस को अपलोड करना है और इस तरीके से अपलोड करना है कि फर्दर मैनिपुलेशन की संभावना खत्म हो जाती है, तो अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है।
आशीष जी, नए कानूनों में ई रिकॉर्ड का प्रावधान किया गया, यानी कि जीरो ई एफआईआर और चार्जशीट, ये सब कुछ डिजिटल होगा, लेकिन आम जनता को न्याय सरल, सुलभ और सम्मान एक समान रूप से प्राप्त हो, तो ऐसे में देशवासियों को जागरूक करना भी जरूरी ताकि वो इन सारी चीजों का फायदा उठाएं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे?
जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
जी,
क्योंकि अल्टीमेटली आप कितने भी अच्छे लॉज बना लें, अगर आम लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, अपने राइट्स की जानकारी नहीं है और उन राइट्स को कैसे इन्फोर्स करना है इसकी जानकारी नहीं है, तो तल पर उसका अच्छा असर नहीं दिखेगा। देखिए, सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जब से ये एक्ट पास हुए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से, ऑल इंडिया रेडियो का भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इस तरीके से एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज एक बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से की जा रही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इन सबकी ट्रेनिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, नई फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज देश में बनाई जा रही हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की हमको काफी बड़ी संख्या में जरूरत पड़ेगी, नई जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और जितना भी हम देखिए आकाशवाणी के माध्यम से आपके श्रोताओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप जब कभी भी आप सोशल सर्किल में बैठते हैं वहां पर इन चीजों को डिस्कस करें कि किस तरीके से नए लॉज में पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक स्मूथ तरीके से स्मूथ बनाया गया है और उसको आप जागरूकता फैलाने की कोशिश करें।
आशीष कुमार पांडे जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता आशीष कुमार पांडेय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है eirnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।